प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 16 जून 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज का जो मूल विषय है वो बताना चाहूंगा। और चूंकि कल शनिवार है, कल मेरी आपसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हो पाएगी और परसों रविवार है। इस बार का रविवार आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रविवार है, वह इस मायने में कि आप सब जो सालों से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रारंभिक परीक्षा आप रविवार को देने जाएंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं प्रारंभिक परीक्षा के मनोविज्ञान के बारे में आज आप सबसे विशेष रूप से बात करूंगा। तो यह है आज का मूल विषय। दूसरी बात जो मैं थोड़ी सी सूचना के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं सैटरडे संडे को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आता है, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स आप सबको एज इट इज मिलेंगी और साथ ही साथ आपको योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स भी पढ़ने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के, और प्लस एक वीकली क्वेश्चन भी होगा मेंस के पैटर्न पर, ताकि आप अपने मेन एग्जामिनेशन का भी अभ्यास कर सकें। और फिर सोमवार को आपसे मेरी डायरेक्ट मुलाकात होगी। तो मित्रों, इन सूचनाओं के बाद आइए अब हम न्यूज एनालिसिस पर आते हैं। फ्रेंड्स, रेडियो और दूरदर्शन के न्यूज को अगर हम मिलाकर बात करें तो मुझे लगता है कि जो कल डीडी न्यूज जो थी वो बहुत प्रोमिनेंटली थी और उसमें जो खबरें दिखाई गई थी, दो खबरों की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा विशेष रूप से। और सच पूछे तो जब भी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को जो सिविल सर्विस की तैयारी गंभीरता के साथ कर रहा है, ईमानदारी के साथ करना चाह रहा है, उसे डीडी न्यूज मिस नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सैटरडे संडे को थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी का दिन होता है तो न्यूज की टाइमिंग्स भी कम हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी उसमें नहीं रहती है और डिस्कशन वाली सिचुएशन भी नहीं आती है। खासकर मैं बात कर रहा हूं कि डीडी न्यूज में कोई टॉपिक लिया जाता है जो उस दिन का सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक होता है और उस पर फिर एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है, और जो एक्सपर्ट भी होते हैं वो अपने विषय के अच्छे जानकार होते हैं। इसलिए मुझे डीडी न्यूज को मिस करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि अपराध करना जैसा भी महसूस होता है। तो मित्रों, अगर आपने कल दूरदर्शन की न्यूज सुनी हो तो दो खबरें सबसे महत्वपूर्ण उसमें थी। मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से बात कर रहा हूं। पहली थी दार्जिलिंग की वर्तमान समस्या को लेकर। हम लोगों ने इस पर कल कुछ बातें की थी, मैंने कुछ तथ्य आपको बताए थे। कल एक जो नया तथ्य ऐड हुआ है वो फ्रेंड्स ये तथ्य कि जो दार्जिलिंग स्टेट की देखिए मांग 1988-90 के दौरान उठी थी कि हमको एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, लेकिन वो मांग फिर स्वायत्त शासी परिषद की स्थापना के बाद से वो मांग लगभग खत्म हो गई थी और बीच में छुटपुट उठता रहता था, लेकिन मांग उठती रहती थी लेकिन उसका कोई विशेष अर्थ नहीं था। कल डीडी न्यूज में आपने सुना होगा कि अब जो वहां की बहुत सी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अभी जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के चलते एक हो गई है, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट के एकदम अगेंस्ट हो गई है, तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट हो गई है। और खासकर मुद्दा क्या था, बंगाली को अनिवार्य भाषा बनाना, केवल इसी मुद्दे पर। फिर सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिए और आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, धरपकड़ हुई, तो और दूसरी पार्टियां भी नाराज हो गई और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट मांगेंगे। मित्रों, सवाल इसका नहीं है कि इंडिपेंडेंट स्टेट देने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो तो एक बात की बात है और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हम उस पर अलग से बातें करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैसे भी भारत अब छोटे छोटे स्टेट के पक्ष में है, पूरा का पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है वो अलग ही धीरे धीरे किया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश का देखिए कि वहां उत्तराखंड अलग से बना दिया गया जो पर्वतीय इलाका है, और इधर मैदानी इलाके को बिल्कुल अलग कर दिया गया ताकि वो अपने ढंग से अपना विकास कर सके। गोरखालैंड में जो डिमांड है वो जो हिल एरिया है दार्जिलिंग के आसपास का जो एरिया है वो अलग स्टेट की मांग इसलिए करें क्योंकि वहां नेपाली भारतीय रहते हैं, उनकी अपनी भाषा अलग है, उनकी अपनी थोड़ी सी संस्कृति अलग है, तो वो कहते हैं कि हमारा अपना अलग स्टेट होना चाहिए। तो वो कोई बहुत देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन वो चूंकि सीमा पर है तो थोड़ी सी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस मुद्दे पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने वो डीडी न्यूज सुनी हो तो अभी की जो समस्या है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। अगर स्टेट की डिमांड बढ़ेगी तो फिर हम लोग इस पर बाद में बातें करेंगे। दूसरा था दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। अभी आप देख रहे हैं कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार अपने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बातें कर रहे हैं। कल स्वास्थ्य मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें पहले मिनिस्टर आए और बाद में जो मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मनोज झालानी साहब वो आए थे। मनोज झालानी साहब ने अपने इंटरव्यूज में चीजें बहुत अच्छे तरीके से बताई, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। हालांकि ठीक है, उनसे प्रश्न उसी तरह के पूछे जा रहे थे। उसका पूरा का पूरा केंद्र ये था कि जो जनता के स्वास्थ्य के लिए सरकार क्या कर रही है, स्वास्थ्य संबंधित जो हमारे देश की समस्याएं हैं सरकार उसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है। आपने महसूस किया होगा कि इसी तरह के प्रश्न थे जिसके जवाब उन्होंने बहुत विस्तार के साथ दिए। मित्रों, मैं ये तो नहीं कहता कि उन्होंने जितने पॉइंट्स बताए हैं वो सब आपके काम के हैं, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि ज्यादातर पॉइंट्स काम के थे। तो भले ही हम उन्हें नोट न करें, उसकी जरूरत भी नहीं होती है। कुछ पॉइंट्स जो हमें अपील करते हैं, बड़े प्रोमिनेंट लगते हैं, वो हम नोट भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एमबीबीएस डॉक्टर सभी हमारे पास 65,000 है, लेकिन अब हमने पर ईयर उसकी संख्या बढ़ा दी है, तो 5 साल में जो हमारी रिक्वायरमेंट है एमबीबीएस डॉक्टर की पूरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हाँ, जहां तक स्पेशलिस्ट की बात है, एमडी की बात है, वो अभी संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी काम हो रहा है, तो उसे भी हम जल्दी अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। दवाइयों के वितरण पर सरकार क्या काम कर रही है, इन सब को लेकर के एक बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ था। होता क्या कि जब आप इन सब बातों को सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें अटक जाती हैं और एग्जामिनेशन में फिर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, ये दो इंपॉर्टेंट खबरें थी। फिर एक खबर मित्रों, अभी पशु वध को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है, अभी शुरुआत हुई है, अब देखते हैं कि ये जो इश्यू है किस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन चूंकि पहले गोहत्या का मामला हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ये मामला आगे चला, फिर सरकार अपना एक कानून बनाने के आगे के लिए भी आई, उसके विरोध में कुछ राज्य उतर करके आ गए हैं, तो ये मामला थोड़ा सा सेंसिटिव तो होता जा रहा है। आगे जब ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाएगा, ये जो घटनाएं हैं थोड़ी सा शेप ले लेंगी, तब हम इस पर आगे बात करेंगे। मित्रों, न्यूज एनालिसिस के तहत तो बस इतनी सी बातें थी। अब मैं थोड़े से दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले के 2 ऑडियो में हम लोग खासकर खाड़ी देशों के बारे में बात कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी बात मुझे लगे कि रह गई है, आज मुझे वो बात स्पष्ट कर देनी चाहिए। वे बातें ये फ्रेंड्स कि पूरे के पूरे खाड़ी देशों में अभी जो तनाव का माहौल बना हुआ है, वो आपने देखा कि एक तरफ ईरान है जहां हमले हुए हैं, दूसरी तरफ कतर है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कुछ देशों ने बायकॉट कर दिया है, उसकी नाकेबंदी हो गई है, और तीसरी तरफ सऊदी अरब है, है ना। अभी हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति सऊदी अरब गए, और वहां उन्होंने जाने के बाद सऊदी अरब से मित्रता की बात कही, और जाने के बाद उन्होंने जमकर ईरान को कोसा भी, ईरान पर वो जमकर बरसे भी। तो मैं थोड़ा सा अब आपको सिनेरियो बता रहा हूं। होता क्या है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में एक एक देश को लेकर के इस तरह से समझने और जानने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे जानने के सूत्र हैं वो आपस में उलझ जाते हैं, हमारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं रह पाती, जो तस्वीर जो बहुत क्लियर होनी चाहिए वो तस्वीर धुंधली पड़ जाती है, या कह लीजिए कि एक दूसरे से उलझ जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी ये हो जाता है कि हम जितने भी वहां राष्ट्र हैं या जो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं उस एरिया के, हम देखें कि वो किसके साथ खड़े हैं। यानी कि देखिए, जब कोई भी युद्ध होगा, कोई भी विवाद होगा, संकट होगा, तो केवल 3 वर्ग बनेंगे, 3 वर्ग बनेंगे। नंबर 1 कि आप ए के साथ हैं या आप बी के साथ हैं, 2 वर्ग हो गए, आप ए के साथ हैं या बी के साथ हैं। तीसरा ये हो सकता है कि आप इन दोनों में से किसी के साथ नहीं हैं। तो मित्रों, अब ये जो किसी के साथ नहीं है ये वाला मामला थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दौर अब उस तरीके से नहीं रह गया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ गया है। अब पूरी दुनिया जब एक हो गई है तो आप एकदम तटस्थता की नीति तो नहीं अपना सकते, बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने देखा कि 2 दिन पहले ही सऊदी अरब ने बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान से पूछा है कि आप बताइए कि आप किसके साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल हो गया है। तो यूं कह लीजिए कि बस दो ही बच गए हैं, ए और बी। ठीक है, जब हम मध्य पूर्व की बात करते हैं तो कल हमने बात की खाड़ी देशों की, मध्य पूर्व एशिया की, तो हमारे सामने दो वर्ग थे, दो गुट थे कह लीजिए, शिया और सुन्नी। वो आपके दिमाग में मेरी समझ से बहुत क्लियर हो गया होगा, और ये हमेशा क्लियर होनी चाहिए क्योंकि अभी तो मैं इस वर्तमान घटनाओं को आधार लेकर के बात कर रहा हूं, लेकिन घटनाएं आगे भी घटेंगी बढ़ेंगी, तो उनको समझने के लिए ये फाउंडेशन का काम करेगी। बहुत अच्छे तरीके से फिर चीजें आपकी समझ में आने लगेंगी, इसलिए इन बातों को आप सामान्य मानकर यूं ही नजरअंदाज मत कर दीजिएगा। चाहे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं कि बाय द वे यदि आपको कभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कंसल्ट कर सके अपने नोट से। तो मित्रों, एक तरफ है ईरान, जो पूरे के पूरे जो इस्लामिक देश हैं, मैंने कल ये वक्तव्य दिया था कि उसमें दो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, एक है ईरान और दूसरा है सऊदी अरब, दोनों बहुत ही प्रोमिनेंट और पावरफुल देश हैं। आप ये भी देख चुके हैं कि ईरान शिया बहुल है और सऊदी अरब सुन्नी बहुल है, राइट। अब देखिए कि इसमें अब शक्ति का बंटवारा किस तरीके से हो रहा है, शक्ति किस तरीके से, गुट किस तरीके से बन रहे हैं, और यह आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। अमेरिका किसकी तरफ है, अभी आपके दिमाग में फट से उत्तर आ जाना चाहिए, सऊदी अरब की तरफ है, वो अभी सऊदी अरब गया था। मैंने कहा कि सऊदी अरब जाने के बाद वो ईरान पर भड़के, यानी कि ईरान के विरोध में है, राइट। एक देश और है सीरिया, जो बार बार आप सुनते हैं, राइट। सीरिया में दोनों शक्तियां आपस में टकरा रही हैं, वो है अमेरिका और रूस। वहां के जो राष्ट्रपति असद हैं, उसका साथ दे रहा है रूस, रूस राष्ट्रपति असद के साथ है, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति असद को हटाने में लगा हुआ है। अब अमेरिका और राष्ट्रपति एक दूसरे का वहां, अमेरिका और रूस वहां एक दूसरे का के विरोध में खड़े, आप देख रहे हैं स्थिति एक ही है, और मजेदार बात है कि दोनों आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, मजेदार बात है, आप विरोधाभास देखिए। अब ईरान क्या कर रहा है, आप देखिए कि ईरान सीरिया के साथ है, सीरिया के राष्ट्रपति के साथ है, और अगर ईरान सीरिया के राष्ट्रपति के साथ है, यानी कि राष्ट्रपति असद के साथ है, तो फिर रूस किसके साथ है, फिर आपको लगेगा कि इसका मतलब है कि रूस ईरान के साथ है। तो अब यहां आपको दो ध्रुव गुट आराम से दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं आपकी ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा है, रूस, और सऊदी अरब को सपोर्ट कौन कर रहा है, अमेरिका। और मजेदार बात है कि सऊदी अरब और ईरान ये दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। अब ऐसे में आप विश्व आतंकवाद से कैसे निपटेंगे। तो मित्रों, ये मैंने आपको एक सिचुएशन बताई है, मैं और देशों को ला ला करके इस स्पष्टता को बाधित नहीं करना चाह रहा हूं, अदरवाइज आपके दिमाग में अभी सुनते समय तो सब चीजें सरल लगेंगी लेकिन बाद में जटिलताएं आती चली जाएंगी, है ना। इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, और आप इन्हें चाहे तो नोट कर लें कि किस तरीके से गुट बन गए हैं, और यदि आप एक बार ऐसा कर लेंगे तो देखेंगे कि भविष्य में इस पर जब आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, अब न्यूज और व्यूज के बाद मैं अब थोड़े से दूसरे पॉइंट्स पर आना चाहूंगा, वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। फ्रेंड्स, आज के अखबार में एक छोटी सी खबर है, और वह है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लेकर, वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक, ये कल जारी किया गया है। दोस्तों, कार्नेल यूनिवर्सिटी, इंसिड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मिलकर के इसे जारी करते हैं। इनोवेशन का मतलब है कि कहां नए नए चीजें हो रही हैं। 130 देशों की सूची में भारत को इस बार 60वां स्थान मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और नवोन्मेष पर सरकार का भी जोर है और विश्व की अर्थव्यवस्था भी इसी पर निर्भर करती है। जो देश इसमें जितना आगे होगा, आगे की आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि उसकी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए डेटा आपको मालूम होना चाहिए। भारत का स्थान है 60वां, पिछले साल था 66वां, तो वो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, और तुलनात्मक रूप में चीन हमसे बहुत आगे है, वो 22वें स्थान पर है। मतलब चीन में बहुत नई नई चीजें हो रही हैं। टॉप पर तो वही है फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब टॉप पर हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी से जुड़ी हुई बात मैं एक और आपसे बताना चाहूंगा, और वह है कि इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल इंग्लिश में इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है जो मैं प्रेस क्लिपिंग्स के तहत आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब यदि आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं तो बेहतर है आप ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ें, अदरवाइज इसका हिंदी अनुवाद करंट कंटेंट के तहत जल्दी ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपकी हमेशा लगातार निगाह रहनी चाहिए। थोड़ी सी बात है फ्रेंड्स करंट कंटेंट पर। आज एक करंट कंटेंट डाला गया है, वो है विकेंद्रीकरण के लिए निचले स्तर तक जाने की जरूरत है। ये पॉइंट पॉइंट वाइज है, आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में पंचायती व्यवस्था के बाद डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन क्या हम सच में उस स्थिति में आ गए हैं? इस आर्टिकल में आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से कि ठीक है, हम पॉलिटिकली हमने डेमोक्रेसी कर दी है, पंचायत पर आ गए हैं, जनपद पंचायत पर आ गए हैं, इन सब पर चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, कहां कहां बाधाएं पैदा हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और चुने हुए प्रतिनिधि, इन सब में कहां टकराव हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसको लेकर के कुछ अच्छे तथ्य आपको मिलेंगे। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटी का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, लेकिन वो किस तरीके से यूज हो रहा है वो पॉलिटी है, और डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिटी के बारे में आपको इस करंट कंटेंट में पढ़ने को मिलेगा, प्लीज आप उसका जरूर उपयोग करें। मित्रों अब मैं आता हूं आज के फैक्ट पर, एक नया तथ्य और एक बहुत ही जोरदार तथ्य। आप देख रहे हैं कि लगातार भारत में जॉब का संकट बना हुआ है, रोजगार के संकट पैदा हो रहे हैं, और केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रहे हैं। ब्रेग्जिट उसी का परिणाम है और ट्रंप की जीत भी उसी का परिणाम है, और इसके कारणों में कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मशीनीकरण हो रहा है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, इसकी वजह से लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं। राइट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसे का भी है और जनरल स्टडीज का भी है। इसके बारे में मैं आपको दो तथ्य बता रहा हूं, आप देखिए कि कब इसकी परिकल्पना कर ली गई थी। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक 1936 में कॉमेडी फिल्म आई थी फ्रेंड्स, चार्ली चैपलिन की, अमेरिका के बहुत ही हास्य अभिनेता है, नाम आपने सुना होगा, मॉडर्न टाइम्स। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मैंने देखी है। उसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति है जो एक फैक्ट्री में काम करता है, तो बड़े कॉमेडी तरीके से वो दिखाया गया है कि कैसे वो जो फैक्ट्री है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आधुनिक औद्योगिक समाज, कैसे उसे बिल्कुल निकालकर बाहर कर देता है, क्या क्या संकट पैदा होते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस फिल्म में दिखाया गया है। मतलब उस समय ये देख लिया गया था कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये किस तरीके से आदमी के विरोध में एक दिन खड़ी होगी। इससे भी जो बेहतर फिल्म है जो हमारे टॉपिक को सूट करती है फ्रेंड्स, वो है 1957 में बीआर चोपड़ा की एक फिल्म आई थी, आपको पता होगा, देखी भी होगी आपने शायद, नया दौर। नया दौर फिल्म में यह दिखाया गया है कि आजादी के बाद विकास के नाम पर हमने क्या किया, मशीनीकरण करना शुरू किया, मशीनें लानी शुरू की, और पता लगा कि उसने व्यक्ति की जो आजीविका के साधन थे छीन लिए, उसे बेरोजगार कर दिया, उसे तंगहाल बना दिया, उसे बदहाल कर दिया। इसमें एक तांगे वाला है जिसका नाम जीवन है, और उसी गांव में फिर वो बस आ जाती है, और फिर किस तरह से वो संकट से जूझता है, और आखिरी में वह उस बस से रेस लगाने की ठानता है कि मैं इस बस के साथ रेस लगाऊंगा। यानी कि हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है वो अब ये जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है उसके साथ कॉम्पिटिशन करने की ठानता है। ये एक छोटे से दो उदाहरण हैं, मुझे लगता है कि यदि आप कभी इस तरह के प्रश्न आए तो इनमें इसे मेंशन करेंगे तो आपको एक आपके एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो दोस्तों अब अंत में मैं आता हूं उन स्टूडेंट के स्वागत करने पर जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन चार स्टूडेंट्स के नाम हैं जादव राजेंद्र मान सिंह भाई राधनपुर गुजरात से, सुमन कुमार महतो रांची झारखंड से, सत्य देव कुमार नालंदा बिहार से, और बी मनीष दिगंबर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस के समाप्त करने की इजाजत इस तथ्य के साथ लेता हूं कि दो दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप सिविल सर्विस के का प्री एग्जाम दे चुके होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका यह एग्जाम बहुत शुभ हो, अच्छा हो। और मित्रों, इसका जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है वो अंत में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, और वह यह कि जो प्री एग्जामिनेशन है, याद रखिए कि एक साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, और इस साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यदि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सके, अपनी मानसिक मजबूती को बनाए रख सके, तो मान करके चलिए कि आपके 25% क्वेश्चंस अपने आप ही सही होंगे। आप देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस की जो बुनावट है, उसमें दो तीन चैलेंजेज सबसे ज्यादा रहते हैं। पहला चैलेंजेज है समय के विरोध में दबाव को बर्दाश्त करना, आपकी स्पीड। जब समय का दबाव आता है तो दिमाग में तनाव उत्पन्न होते हैं और हमारा मनोविज्ञान गड़बड़ा जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो है प्रश्नों की बनावट। प्रश्न उलझाने वाले होते हैं, वो भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से आपको चैलेंज देते हैं कि आप इस उलझाव में भी कैसे अपनी स्पष्टता बनाए रखते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों ऑप्शन जो दिए जाते हैं, जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें आपको भ्रमित करने की कोशिश की जाती है, बरगलाने की कोशिश की जाती है। तो जरूरी होता है कि जो तथ्य हैं आपके दिमाग में स्पष्ट हों, लेकिन तथ्य स्पष्ट तभी होंगे जब आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। यदि आप मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे तो मान करके चले कि ऐसे तथ्य भी वहां गड़बड़ हो जाएंगे जो अन्यथा आप जानते थे और उन्हें सही करके आ सकते थे। दोस्तों, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, बैठ गए हैं, जो तैयारी हो चुकी है उसे ही संपूर्ण तैयारी माने। पेपर चाहे कठिन आया हो या पेपर सरल आया हो, उसकी बिल्कुल चिंता न करें। आप केवल एक चिंता करें कि मुझे अपना बेस्ट देना है। बस केवल एक बात, मुझे अपना बेस्ट देना है। ना आप परिणाम की चिंता करें, ना दूसरों की चिंता करें। यदि आप इस मनोवैज्ञानिक दृढ़ता पर रहेंगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि अदरवाइज आप दूसरी स्थिति में होते उससे आपका पेपर बेहतर होगा। मित्रों, मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से रविवार को प्री एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले अपने सभी स्टूडेंट्स के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि ईश्वर उन्हें शक्ति दे, उन्हें समर्थ बनाए ताकि वे अपना बेस्ट देकर आ सके। और मित्रों, अब आगे हम सोमवार को बात करेंगे। मेरा अभिवादन और मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।